कैसे झेल ले है अमोल जिंदगी, नहीं कि जैसे खेल ले हारे या उतार ले या कैसे झेल ले। एक प्यार नंद नम ये तो बाजी है, जीत है के जिस में वो खुदा भी राजी है, सारा सो
ग्लोबल समिट 2023 आज के सुवर्ण अवसर पर हम सबके साथ है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी। हम सभी अपने हायर एनर्जी के साथ, दिल की भावनाओं के साथ एक हाथ की ताली बजाते हुए दीदी जी का स्वागत करेंगे। आप में से कौन है जो दीदी जी को नहीं जानते हैं? कोई है ऐसा? क्योंकि आदरणीय शिवानी दीदी जी ग्लोबली वेल नोन है। आप वह लक्की सोल है, आपको बचपन से ही स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिला हुआ है और उसी में आप पले पोसे हैं। आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुना महाराष्ट्र। आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 1995 से आप यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप से हम सबके साथ हैं। आप बहुत सुंदर मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। आपके लेक्चर सुनते हुए हर कोई व्यक्ति पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ता है और आप अच्छे टीवी आइकॉन के साथ साथ कॉरपोरेटर स्पीकर भी हैं। अनेक सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड वाइड आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के अच्छे एग्जाम्पल हैं। आपके जीवन की धारणाएं मूल्यनिष्ठ हैं, जो हर कोई को मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप परमात्मा शिव पिता की एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, हर किसी को उस परमात्मा पिता से जोड़ते हुए उसकी लाइफ में हर मोमेंट में कैसे खुशियां बनी रहे, हर मोमेंट को हम कैसे एंजॉय करें। तो आज शिवानी दीदी जी हमें बहुत सुंदर कला सिखाएंगे। आपका टॉपिक है सेलिब्रेटिंग द मोमेंट ऑफ लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। सुनते हैं आदरणीय शिवानी दीदी जी से।
ओम शांति, ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे। ओम शांति। सभी सीधा होकर बैठेंगे। ये एक अभ्यास है जो आप कल से बार बार कर रहे होंगे और यहां आप जितने दिन इस सुंदर यात्रा पर हैं आप इस अभ्यास को बार बार करेंगे। लेकिन ये अभ्यास इतना नेचुरल और स्वाभाविक बन जाए कि यहां से जाने के बाद भी ये आपके जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। तो चारों तरफ से ध्यान को हटाकर यहां लेकर आया अटेंशन, ब्रिक्विटी के बीच आसपास नहीं देखना, यहां लाना है अटेंशन ब्रिक्विटी के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं। और विजुअलाइज कीजिए एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है, शक्ति है, एनर्जी है, उसको देखना है आपने। जैसे अभी हम अगर कहें घर तो आपको घर दिखाई देता है, देखें घर को देखें अपने। दो दिन हो गए घर से आए हुए, जैसे ही मन कहता है घर तो बुद्धि घर का चित्र देख सकती है। मन कहता है परिवार तो बुद्धि परिवार का चेहरा देख सकती है। किस किस को दिखाई देता है, हाथ उठाओ, दिखाई देता है ना, तो वो कौन देख रहा है, उसको हम कहते हैं बुद्धि का तीसरा नेत्र। एक होता है जो हम इन आंखों से देखते हैं और एक होता है जो हम बुद्धि से देखते हैं। तो मेडिटेशन मतलब मन संकल्प करता है, बुद्धि उसको देखती है और फिर उसका हमें अनुभव होता है और वो हमारा संस्कार बनता जाता है। तो अब देखेंगे मैं आत्मा, देखें इसको, मैं आत्मा। ब्रिकुटी के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, जैसे हम तिलक लगाते हैं, देखें उसको, बहुत शुद्ध पवित्र चमकता हुआ अपनी लाइट और माइट चारों तरफ फैलाता हुआ ये छोटा सा सितारा, ये शक्ति, मैं आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक, मन की मालिक, मैं आत्मा हूं। अभी मन में एक संकल्प करेंगे, आप सब इस संकल्प को दोहराएंगे मन में, मैं पवित्र आत्मा हूं। बोलिए, गाइए अपने आप से, मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध, बेदाग, निस्वार्थ। मैं पवित्र आत्मा हूं। इसको फील कीजिए, प्योरिटी, पवित्रता कैसी होती है इसको फील करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हर परिस्थिति में मेरे सामने कोई भी बात आ जाए, हर परिस्थिति में अचल, अडोल, शक्तिशाली, असंभव को संभव करने वाली, समस्या में समाधान निकालने वाली, हर मुश्किल को आसान करने वाली, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। कहिएगा ये अपने आप से, याद दिलाइए अपने आप को कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा संस्कार क्या है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूं। देखिए अपने रिश्तों को और आज पक्का कीजिए उनके साथ कि मुझे चाहिए नहीं, मैं आप सबको देने वाली आत्मा हूं। प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। हमेशा शांत, स्थिर, शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। कहिए अपने आप को ये, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। सबको सुख देने वाला, सबका कल्याण करने वाला, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। ओम शांति, ओम शांति, शांति। हाथ उठाइएगा, कौन कौन इन संकल्पों के साथ अपने मन को चला सका उतनी देर के लिए, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अब अपने आप से ये पक्का करो कि जब हम वापस जाएंगे यहाँ से 3 दिन बाद, हम हर रोज इसका अभ्यास करेंगे। करेंगे अभ्यास हर रोज? यस, हर रोज अभ्यास करेंगे। क्यों अभ्यास करना है इसका? क्योंकि इसका अभ्यास करने से हमारी सोच बदलेगी, परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलेगा, रिश्ते निभाने का तरीका बदलेगा, और जो हम अपने शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं वो बदल जाएगी। एक सिंपल लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है, अर्थात मेरी दुनिया, मतलब मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा काम, मेरा घर, ये सब संकल्पों से बनता है। और अगर हमने सही संकल्प करने शुरू कर दिए तो हमारी सृष्टि कैसे बन जाएगी, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को देखिएगा, आंसर आपने देना है। टीवी को मत देखो, एक दूसरे को देखते हैं। क्या करेंगे टीवी को देखकर? अब अपने आप से पूछना, आंसर आपने देना है, तो ध्यान से सुनना है। मन खुश होता है तो शरीर स्वस्थ होता है, या शरीर स्वस्थ होता है तो मन खुश होता है? ध्यान से सुनना, मन खुश होता है तो शरीर स्वस्थ होता है, या शरीर स्वस्थ होता है तो मन खुश होता है? अच्छा, अब हाथ उठाना, किस किस को लगता है शरीर स्वस्थ होता है तो मन खुश होता है, और कौन कौन मानता है कि मन खुश होता है तो शरीर स्वस्थ होता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दूसरा इक्वेशन चेक करना, मन खुश होता है तो रिश्ते प्यारे बन जाते हैं, या रिश्ते अच्छे होते हैं तो मन खुश होता है? सारे रिश्ते मेरे अच्छे हो जाएं तो ऑटोमेटिकली मैं खुश हो जाऊंगी, ये राइट है? या मेरा मन अच्छा होगा, खुश होगा, तो मेरे रिश्ते अपने आप सारे अच्छे हो जाएंगे, राइट? अपने आप के लिए ऐसे करके ताली बजाना कि हमें सब कुछ पता है ना? लेकिन साथ साथ आज अपने आप को आशीर्वाद भी देना कि सब कुछ जो मुझे पता है, मुझे उसको अब जीवन में जीना भी वैसे है। ज्ञान मतलब समझ, ज्ञान मतलब समझ कि जो पता है उसको समझ कर जीना है, क्योंकि जब हम इस समझ को भूल जाते हैं तो हम ऑपोजिट तरीके से जीना शुरू करते हैं। हम कहते हैं क्या करें, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो नेचुरली मैं दुखी होंगी ना, मतलब शरीर ठीक नहीं है तो मैं दुखी होंगी, और अगर मैं दुखी होंगी तो क्या शरीर ठीक हो जाएगा उधर से? फिर नहीं, उसका दर्द बढ़ जाएगा, उसका कष्ट बढ़ जाएगा। फिर हम कहते हैं देखो ना, वो ठीक से व्यवहार नहीं करते इसलिए मैं दुखी हूँ, वो ठीक हो जाए तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी, और इसका इंतजार करते रहेंगे तो दिन ब दिन हमारा दुख क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो राजयोग अर्थात क्या? राजयोग अर्थात मन का मालिक बनना, राजयोग अर्थात अपने जीवन का मालिक बनना। आज दिन तक हम मन के गुलाम की तरह चल रहे थे और हमने परिस्थितियों और लोगों पर अपने मन को निर्भर किया। कैसे किया? चेक करना कि अगर आप आपकी सोच ऐसे चलती है, हमारा मन कहता था ऐसे हुआ ना इसलिए मुझे बुरा लगा, उसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, आज उसका एग्जाम है ना इसलिए मुझे चिंता है, मतलब मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर थी? किस पर निर्भर थी? उंगली रखो, कहां थी मेरे मन की स्थिति निर्भर? और जिस दिन हम खुश भी थे ना, तो किसी ने आके पूछा क्या बात है आज आप बहुत खुश हो, कहते ऐसे हुआ ना इसलिए मैं आज खुश हूं। तो मन की स्थिति किस पर निर्भर थी? उंगली रखो, कहां निर्भर थी? इसका मतलब मेरे मन का रिमोट कंट्रोल कहां था? और क्योंकि मेरे मन की स्थिति बाहर परिस्थितियों पर निर्भर थी, तो नेचुरल है कि मैं मन, आत्मा इंतजार करती रहती थी कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मेरा मन ठीक हो जाएगा। और फिर हम यहां पहुंचे और हमें समझ में आया मैं आत्मा मालिक हूं, ये मन मेरा है, और आज से हम जीवन के तरीकों को, जीने के तरीके को बिल्कुल बदल देंगे, और हम ये कहेंगे बात ऐसी थी लेकिन मेरे मन की स्थिति का जिम्मेवार कौन? अब उंगली रखो, मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? देखो, आपको बोला ना टीवी नहीं देखो, फिर भी उधर देखते, फिर वापस उधर चले जाते, मन का गुलाम नहीं बनना, इस तरफ देखो सामने। ये है अपने मन पर जीत पाना कि जो हमने डिसाइड किया हमने वो ही करना है, और जैसे ही वो मन फिर ऐसे करे तो बोलो उसको वापस लेकर आओ, तुमको मेरा कहना मानना होगा, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। मालिक कौन है? मालिक कौन है? मैं मालिक हूं अपने जीवन की। तो जो जीवन जीने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। इसको कहा जाता है आत्मनिर्भर जीवन। आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा किस पर निर्भर, उंगली रखिए, मैं आत्मा किस पर निर्भर, मैं आत्मा किस पर निर्भर, परिस्थिति है लेकिन मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर, मुझ पर निर्भर। अब आप ये बताइएगा कि क्या एक मुश्किल परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है? क्या एक मुश्किल परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है? क्या हुआ, आंसर दो। क्या एक मुश्किल परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है? अच्छा, अगर किसी ने गलत व्यवहार किया तो क्या प्यार से बात की जा सकती है? इसमें हाथ उठाओ। अगर आपसे कोई गलत तरह से व्यवहार करे, क्या आप उससे प्यार से बात कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता? जो नहीं कर सकता वो हाथ उठाओ, एक बार देखें कौन नहीं कर सकता। भाई सब एक बार उठेंगे आप? हाँ, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सब अपने आप को उनकी जगह पर खड़ा करना, ठीक है? आप वहां हैं, मैं यहां हूं, मैं आपसे बहुत गलत तरह से व्यवहार करूंगी। अभी इतने हजार लोगों के सामने आपसे गलत तरह से बात करूंगी, आपके बारे में गलत बोलूंगी, आपकी निंदा करूंगी, और वो भी सबके सामने करूंगी। वो किसका कर्म है? वो मेरा है। जब मैं इतना गलत 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 करूंगी, क्या आप प्यार से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन रोकेगा आपको? आप खुद रोकेंगे, ठीक है ना? मैं तो नहीं रोकूंगी ना, आप खुद रोकेंगे। आप सब सुन रहे हैं इसको ध्यान से? व्यवहार मैंने गलत किया, ठीक है, बात आपने सामने से करनी है, चॉइस आपकी है कि आपको अच्छे से बात करनी है या आपको, और फिर उसमें भी आपकी चॉइस है कि आपको कितने अच्छे से बात करनी है या कितनी बुरी तरह से बात करनी है, और फिर उसमें भी चॉइस है कि अगर बुरी तरह से बात की तो कब तक बुरी तरह से बात करनी है, और उसमें भी चॉइस है कि कब तक वो बुरी तरह वाली फीलिंग पकड़ के रखनी है। सारी चॉइस किसके पास है? सारी चॉइस किसके पास है? आपके पास है। आप सबके पास भी चॉइस है? वो कह रहे हैं मेरे पास चॉइस है कि कितना अच्छे से बात करनी है, कितनी बुरी तरह से बात करनी है, कितने प्यार से बात करनी है। कौन कौन मानता है कि हमारे पास चॉइस है? हाथ उठाओ, उठाओ, उठाओ। वेरी गुड। अब पहला स्टेप हो गया, इसका मतलब चॉइस किसके पास है? पहले हम क्या करते थे? पहले हम नहीं कहते थे मेरी चॉइस है, हम क्या कहते थे? किसकी वजह से मुझे बुरा लगा? अब वो पार्ट खत्म हो गया, अब पावर किसके पास आ गई? मेरी चॉइस है। अब ध्यान से, जब आपकी चॉइस है कि आपको प्यार से बात करनी है या कड़वा बात करनी है, बात को खत्म करना है या बात को पकड़ के रखना है, तो आप किस आधार से चूज करेंगे? आप चॉइस वो करेंगे जो आपके फायदे की है, राइट? आप चॉइस वो करेंगे जो आपके फायदे की है, यस और नो? कौन कौन चॉइस? नहीं नहीं, एक मिनट, आप बैठे कैसे? रुको, हमारा होमवर्क बचा है अभी। हाँ, आप चॉइस वो करेंगे जो आपके फायदे की है। कौन कौन चॉइस वो करेगा जो आपके फायदे की है? ओके, अब अगर आप मुझसे कड़वा बात करेंगे और जितना कड़वा मैंने बोला उतना ही कड़वा आप बोलेंगे, शायद उससे भी ज्यादा बोलेंगे, तो आपकी खुशी का क्या होगा? बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी? कितनी घटेगी? काफी घटेगी। और वो जो खुशी की जगह कड़वाहट आ जाएगी, उसकी वाइब्रेशन किसको जाएगी? इस शरीर को जाएगी। आपके शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। वेरी गुड, हम क्लियर है ना सारी कुछ चीजों के ऊपर? आपके शरीर का स्वास्थ्य भी घटेगा। और इतना कड़वा कड़वा होकर जब आप घर अपने परिवार के पास जाएंगे तो आपके रिश्ते बढ़िया होंगे या घटेंगे? घटेंगे। तो आप मेरी गलती की वजह से अपने इतने सारे नुकसान करना चाहते हैं क्या? करना नहीं करना, तो आप थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे अगर मैं आपसे गलत तरीके से बात करूंगी। बट क्या? बट मतलब लेकिन। लेकिन हमारा अहंकार कहता है मैं क्यों करूं अच्छे से बात, राइट? मेरा अहंकार कहता है उन्होंने गलत तरीके से किया, मैं क्यों अच्छे से करूं? तो अहंकार को कहो उन्होंने गलत किया, वो उनका कर्म, उनका कर्म, उनका भाग्य, उनके कर्म की वजह से मैं अपना नुकसान क्यों करूं? क्यों करूं अपना नुकसान? करूं नुकसान? नहीं करूं। तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन है कि मैं गलत करूं, आप वहां से अच्छे तरह से करें। मैं घर जाके दुखी रहूंगी, लेकिन आपका मन कैसा रहेगा? शांत रहेगा, खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। अब इसमें भी एक और चॉइस भी है, वो तो हमने कभी शायद सोची भी नहीं थी, और वो चॉइस ये है कि आप मुझको दुआएं दें। ये दे सकते हैं? सोचिए, जो आपके साथ गलत करे उसको दुआएं दे सकते हैं? सोचो, मुझे नहीं देनी है, वो जो पीछे जिनको छोड़ के आए हो ना, जिन्होंने आपके साथ कभी गलत किया है, उनको दुआएं दे सकते हैं? बताइए, यस नो, बोलो बोलो, जो बोल दिया वो हो जाएगा, सिर्फ डिसाइड करना है देना या नहीं देना। देना नहीं देना, कौन कौन रेडी है देने के लिए? और हम क्यों दे रहे हैं वो बहुत क्लियर होना है। मेरे लिए नहीं दे रहे हैं, उनके लिए नहीं दे रहे हैं, किसके फायदे के लिए दे रहे हैं? उंगली रखो, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। तो जीवन में हमेशा अपने फायदे के लिए जीना। जब आप अपने फायदे के लिए जियोगे, सामने वाले का फायदा उसमें अपने आप हो जाएगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। आपने उनके लिए ताली बजाई, उन्होंने अपनी नजरिया सोच को एकदम बदल दिया इतनी जल्दी, फिर हम ना छोटी छोटी बातें बैठकर हम सोचते नहीं हैं कि इसमें मेरा फायदा होगा या इसमें मेरा नुकसान होगा, और बिना जाने बिना समझे हम हर रोज छोटी छोटी बातों में अपना कितना नुकसान करते रहते हैं, कितनी अपनी शक्ति घटती रहती है। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? वेरी गुड, चाहिए, प्यार चाहिए और शांति भी चाहिए। तो इसका मतलब जब हमने शुरू में मेडिटेशन किया, आपको याद नहीं है हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था मुझे शांति चाहिए वाली आत्मा हूं, नहीं बोला था, क्या बोला था? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्या हमने ये डिसाइड किया था कि मैं प्यार मांगने वाली आत्मा हूं? नहीं। क्या रिवाइज किया था हमने? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। क्या हमने ये कहा था कि मैं खुशी ढूंढने वाली आत्मा हूं? नहीं। क्या हूं मैं? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। ये जीवन जीने के तरीके को कंप्लीटली बदल देगा, क्योंकि नहीं तो हम दुनिया में ऐसे खड़े हैं। हाथ करो ऐसे, जरा कैसा लगता है ऐसा हाथ रख के? चाहिए 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 चाहिए, ऐसा अच्छा लगता है या ऐसा अच्छा लगता है? आपको कौन सा अच्छा लगता है आप बताओ? जो अच्छा लगता है हम वैसे करेंगे। फिर आपको ऐसे अच्छा लगता है या आपको ऐसे अच्छा लगता है? हाथ ऐसा करके दिखाओ ऊपर ऊपर, आपका फोटो टीवी पे आएगा, फिर घर पे सब देखेंगे, अरे ये ऐसे वाले बन के आने वाले हैं वापस, अभी ये गए तो ऐसे थे, आने ये वापस वैसे वाले वाले, ऐसे जाएंगे हम वापस। हर उत्सव पर, जिसको चीज को हमें रोज करना है, हर उत्सव पर, और कई घरों में तो हर रोज दिया जलाया जाता है, जलाया जाता है ना दिया, और क्या कहा जाता है कि जब तक दिया जलता रहेगा तो सब कुछ, शब्द क्या है, दिया जलता रहेगा तो सब कुछ शुभ है, और अगर दिया बुझ गया तो, बोलिए, दिया बुझ गया तो अशुभ है। कभी हमने सोचा कि वो छोटा सा दिया अगर वो बुझ गया तो उसमें अशुभ क्या है? उसको जाकर हम वापस चला देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? जिनके सामने हम ऐसे खड़े थे वो कैसे खड़े थे? जिनके सामने हम खड़े थे प्यार दो, वो भी कैसे खड़े थे? वो कहते मुझे भी आप दो, तो दोनों ऐसे खड़े थे तो देगा कौन? इसलिए तो झगड़ा होता है घर पे, दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं, आप मुझे दो, वो कहते हैं आप मुझे दो, दोनों मिलके तीसरे को देखते हैं, भाई आप तो मुझे दो, कोई तो दे। हर घर में एक दिया चाहिए, हर घर में एक दिया चाहिए, और अगर एक दिया हर घर में जलेगा तो जीवन हमेशा शुभ होगा। आप यहां आए हैं अपना दिया जलाने। ताली तो अच्छी लग रही है बजाने के लिए, लेकिन आप वो दिया बनने के लिए रेडी है कि नहीं वो पक्का करो पहले। हाँ रेडी है, रेडी है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है आज से मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई कैसा भी व्यवहार करे मैं सबको दुआएं दे सकता हूं। आप कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? कितना सहज है, हमने सहज चीजों को कितना मुश्किल बना के रखा हुआ है। सिर्फ एक मिनट इस सीन को सामने लेकर आना। अच्छा, किस किस के पास कोई एक है जिसने आपके साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार किया? हाथ उठाओ। किस किस के पास एक नाम है कोई ऐसा? गलत मतलब ऐसे नहीं कोई बहुत पाप किया, थोड़ा सा गलत, कभी ठीक से नहीं बात की, कभी चिल्ला के बात किया। चलो आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कि दुआएं देना आसान है कि नहीं है। आंख बंद करो, एक मिनट में यहां से अपने घर पहुंच जाओ और उनको देखो, जो जाने अनजाने कभी कभी या हर रोज उनका व्यवहार मेरे साथ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकर आए उनको अपने सामने। ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या ये इनका संस्कार है? ये अंदर दर्द में है, दुख में है, अहंकार में है, ईर्ष्या में है। कई बातें ऐसी पास्ट में हुई हैं जो मेरे मन पर एक घाव की तरह हैं। आज मुझे उस घाव को मिटाना है। अब कुछ शब्द बोले जाएंगे, आप उस शब्द को रिपीट करेंगे, उनको सामने देखते रहिएगा। जब उनको देखकर हम वो शब्द बोलेंगे तो वो शब्द उन तक वाइब्रेशन के रूप में अभी पहुंच रहे हैं, और हम सब मिलकर बोलेंगे, मन में नहीं बोलेंगे, शब्दों में बोलेंगे। उनको देखते हुए कहिएगा, जो हुआ सो हुआ, बीत गया, फुल स्टॉप। बोलिए अच्छे से, बोलना है सबने मिलके, जो हुआ सो हो गया, बीत गया, फुल स्टॉप। बोलिए इकट्ठे मिलकर, जो हुआ सो हुआ, बात खत्म हुई, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन उनको देखते हुए बोलेंगे, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं। बोलिए, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं। मैं उस बात को बिंदी लगाती हूं, आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं दुआएं। अब एक बार इकट्ठे अच्छे से बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से बोलेंगे ना, आपके मन पर लगा हुआ घाव ठीक हो रहा है। हम अपनी सोच और नजरिए को बदल रहे हैं। फिर से रिपीट करेंगे, जो बीत गया पूरा हुआ। बोलिए अब इकट्ठे से, बोलिए, आपकी सबकी आवाज आनी चाहिए। जो बीत गया, बात खत्म हुई, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं दुआएं और दुआएं। आपने मेरे साथ जो किया आपके साथ उससे भी बहुत ज्यादा बुरा हो। नहीं बोलना ना। हाँ, हम सब शुद्ध पवित्र आत्मा हैं। हम कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते, ये हमारा संस्कार है। और हमें लगा दुआएं देना मुश्किल है, दुआएं देना बहुत आसान है, दुआओं का ऑपोजिट देना मुश्किल है। आपसे बोला भी नहीं गया, देंगे कैसे? अपनी पवित्रता को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए नहीं नहीं हम कैसे दुआएं दे सकते हैं। दुआएं देना तो कितना आसान था। अच्छा, अब जब आप यहां से वापस जाएंगे 15 दिन के लिए, आप हर रोज रात को सोने से पहले ये 3 लाइन को रिपीट कर देना। कर सकते हैं 3 लाइन को रिपीट रात को सोने से पहले? बात खत्म हुई, फुल स्टॉप। मैं आपको क्षमा करती हूं और मेरी तरफ से आज से आपको दुआएं। कौन 3 लाइन बोल सकता है 15 दिन के लिए रोज? अब इससे होगा क्या? जब हम इन 3 लाइन को बार बार रिपीट करेंगे हर रोज, हम अपने संकल्पों को बदल रहे हैं। और जैसे हम अपने संकल्पों को बदलेंगे, हमारे संस्कार बदलते जाएंगे। और जो मुझ आत्मा ने घाव बनाया था, जिस दिन वो बात हुई थी, मेरे मन पर घाव लगा था। लगा था ना घाव? किस किस के मन पर घाव लगा है किसी की बात का? हाथ उठाओ। घाव लगा हुआ, घाव मतलब एक छोटी सी चोट, एक दर्द है जो पीछे है। कभी भी उनका नाम आता है, कभी भी वो बात फिर से याद आती है, मुझे वो बुरा आज भी लगता है, मुझे आज भी वो बात बुरी लगती है। मतलब वो मेरे मन पर घाव था। अब एक चीज पक्का करना, अगर हमने इस घाव को ठीक नहीं किया, अगर हमने इस घाव को ठीक नहीं किया, तो एक तो ये घाव मुझे इस पूरे जीवन में दर्द देता रहेगा। सिर्फ उस व्यक्ति के साथ नहीं देगा। अपनी उंगली को इधर आगे करो, देखते हैं ये घाव मुझे क्या करता है। क्या हुआ? आज सुबह से हम इस हाथ के साथ काम कर रहे थे, पानी का ग्लास उठाया, दर्द हो रहा था, कंघी करने की कोशिश की, दर्द हो रहा था, खाना खा रहे थे, दर्द हो रहा था। और हमने कहा क्या है, हर जगह प्रॉब्लम है, हर चीज में दर्द हो रहा है। और फिर किसी ने प्यार से आकर कहा, ग्लास में दर्द नहीं था, खाने में नहीं था, कंघी में नहीं था, चोट कहां लगी थी? चोट कहां लगी थी? लेकिन वो चोट लगी हुई उंगली से सारे काम करेंगे तो हर काम में क्या होगा? दर्द होगा। हमें भी चोट कहां लगी थी? हमें भी चोट कहां लगी थी? यहां लगी थी। और इस चोट को ठीक नहीं किया, इसी के साथ हर रिश्ते में गए, इसी के साथ हर काम में गए, तो छोटी छोटी बातें हर्ट कर रही थी, छोटी छोटी बातें बुरा लग रहा था, छोटी छोटी बातों में चिंता हो रही थी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहे थे। और फिर हमने कहा जीवन कितना मुश्किल है। जीवन मुश्किल नहीं था, मन पर छोटी सी चोट लगी थी जिसको ठीक नहीं किया था। जैसे उसको ठीक कर लिया, जीवन मौज भरी हो गई। तो कभी भी उंगली वहां नहीं रखनी, इसकी वजह से, उसकी वजह से। उंगली कहां रखनी है, किसकी वजह से? यहां। तो हम करेंगे रात को सोने से पहले 3 लाइन। अब हमें क्यों करना है? जब हमारे मन पर चोट लगती है, हाथ ऐसे करो, मैं आपको दिखाती हूँ, हाथ ऐसे करो, इस पे काले रंग का सर्कल बनाओ अपनी उंगली से, ठीक है? तो जिस दिन मैंने बोला इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसको देखो मेरे साथ गलत करता है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ये मेरे काले रंग के सर्कल थे। काले मतलब लोअर एनर्जी। और फिर ये लाइन मैंने इतनी बार बोली, और जब भी कोई मिला उन्होंने कहा आप कैसे हो, तो मैंने कहा क्या करूं, देखो ना कैसे करते हैं, कहना नहीं मानते, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैंने जीवन में पता नहीं कितनी बार वो काला सर्कल ड्रॉ किया अपने कागज पर, और इतना ड्रॉ किया कि आज हमने कहना शुरू किया मुझे खुशी चाहिए। मतलब खुशी क्या हो गई थी? काला सर्कल ड्रॉ कर करके खुशी कम होती गई थी। अब हमें क्या करना है, जो ये काला सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इसके ऊपर हमें व्हाइट सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो पहले हमने बोला था मैं उनको कभी क्षमा नहीं कर सकती, काले रंग का सर्कल। अब उसके ऊपर व्हाइट सर्कल कौन सा बनाया बोलिए? व्हाइट सर्कल कौन सा बनाया? बात खत्म हुई, मैं आपको क्षमा करती हूं। हमने काले रंग का सर्कल बनाया, ये बात मुझे कभी नहीं भूलेगी, वो भी एक सोच थी। आज हमने व्हाइट रंग का सर्कल बनाया, बात फिनिश्ड हुई, खत्म हुई, मुझे अब इसके बाद कभी याद नहीं आएगी। और जैसे ही हमने उस काले रंग के सर्कल पे व्हाइट बनाया, व्हाइट बनाया, व्हाइट बनाया, तो वो घाव क्या होता गया, घाव क्या होता गया, क्या होता गया, घाव दर्द खत्म होता गया। और सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि जैसे ही यहां से दर्द खत्म होता गया, शरीर से दर्द खत्म होने लग गए, शरीर से दर्द खत्म होने लग जाएंगे, ब्लड प्रेशर ठीक होने लग जाएगा, शुगर लेवल ठीक होने लग जाएगा। गलती उन्होंने की थी, काला सर्कल हमने बनाया, बीमारी हमारे शरीर को आएगी, उनके शरीर को नहीं, क्योंकि मेरे संकल्पों से मेरी सृष्टि बनती है, मेरे संकल्प से मेरा भाग्य बनता है, उनका भाग्य नहीं बनता। तो जैसे कोई त्योहार और उत्सव होता है तो हम क्या कहते हैं एक दूसरे को, हम कहते हैं छोड़ो ना जो हुआ, आज प्यार से मिलते हैं एक दूसरे से, कहते हैं ऐसे नहीं कहते हैं। अभी देखो त्योहार का समय शुरू हो गया है, अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, फिर नवरात्रे आएंगे, दशहरा आएगी, दिवाली आएगा, भाई दूज आएगा, इन सारे त्योहारों पर दोस्त रिश्तेदार हमें क्या कहते हैं, छोड़ो ना जो हुआ, कहते हैं कि नहीं कहते, छोड़ो जो हुआ, आज से कैसे बात करेंगे एक दूसरे से, प्यार से बात करेंगे। तो उत्सव मतलब पुरानी बातों को खत्म करना है। तो हमारे लिए उत्सव कौन से दिन होता है, कौन से दिन उत्सव है, हर दिन उत्सव है। इसलिए आज से हर रोज रात को सोने से पहले एक मिनट निकालकर ये तीन लाइन को रोज बोल दो थोड़े दिन के लिए, दो फायदे होंगे। एक, आपका काला सर्कल चेंज होने लग जाएगा, मतलब वो उंगली पे छोटी सी जो लगी थी चोट, वो क्या होने लग जाएगी, ठीक होने लग जाएगी। सिर्फ उस रिश्ते में ठीक नहीं होगी, शरीर ठीक फील होने लगेगा और रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि यहां लगी हुई चोट, यहां लगी हुई चोट ठीक हो रही है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो दुआएं हम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये एनर्जी किसके पास जाएगी, ये दुआओं की एनर्जी किसके पास जाएगी, उनके पास जाएगी। उनको तो पता भी नहीं है कि हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके पास इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भेजते जाएंगे, क्या आपको लगता है कि उनके ऊपर कुछ असर होगा, क्या आपको लगता है उनके ऊपर असर होगा, किसको लगता है होगा, किसको लगता है पता नहीं, करके नहीं देखा कभी, और किसको लगता है बिल्कुल नहीं होगा। ये होमवर्क जरूर करना जाके, असंभव संभव होता है। जो लोग आपने सोचा था कभी नहीं बदलेंगे, जो लोग आपने सोचा था कभी मेरे से फिर से बात नहीं करेंगे, जो झगड़ा आपने सोचा था कभी ठीक नहीं होगा, जो गांठ आपने सोची थी कभी नहीं खुलेगी रिश्तों में, वो ऐसे खुल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे ये इतना ईजी था तो मैंने पकड़ के क्यों रखा हुआ था इसमें टाइम। सिर्फ संकल्प, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, मतलब मेरे रिश्ते संकल्प से बनते हैं। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, गांठे बढ़ती जाएंगे, दुआएं देंगे, गांठे खुलती जाएंगी, और दुआएं देंगे वो रिश्ता बहुत मजबूत बन जाएगा। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं, सामने वाले के हाथ में नहीं, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। 10 सेकंड निकालो, आंख बंद करो, सबको ले आओ अपने मन पर। लाइन तो आपको पता है, अब क्या बोलनी है, मन में बोल दो। कोई दूर का रिश्ता है, कोई दोस्त है, कोई ऑफिस में साथ काम करने वाला कलीग है, और कोई तो बहुत समीप के रिश्ते हैं जिनकी कोई ना कोई बात मैंने पकड़ ली थी। कई बातें तो मेरे पास बचपन की पकड़ी हुई है, बहुत पुरानी है कई बातें। मुझे लगा था मेरे साथ गलत किया किसी ने, मैंने सोचा मुझे धोखा दिया किसी ने, वो तो सच है किया, उन्होंने तो ठीक नहीं किया, लेकिन मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। उन सब को सामने देखो, प्यार से मन में कहो, बहुत समय से पकड़ के रखा था, आज फिनिश्ड, खत्म। मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं और मेरी तरफ से आज से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं दुआएं और दुआएं। मेरा कर्म हमेशा श्रेष्ठ है, मेरे भाग्य की कलम मेरे हाथ में है, ओके। ओम शांति। वापस आओ। किस किस को कुछ कुछ लोगों के चेहरे दिखाई दे दिए जिसके साथ की बातें फिनिश करनी है। देखो कितना इजी है। अब तो आज रात को जब कमरे में बैठोगे ना सोने से पहले एक बार फिर से देखना और नए नए चेहरे याद आएंगे बहुत सारे। बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं जरूरी, छोटी 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 बहुत ही सारी बातें होती हैं जो हमने पकड़ के रखी हैं। जब हमें ये समझ में आता है मैं आत्मा हूं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि मेरे साथ दो ही चीजें साथ चलती हैं, मेरे संस्कार और मेरे कर्म, राइट। और एक दिन अचानक, टाइम पता भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन अचानक मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं ना अचानक कैसे भाग्य बदलते हैं, अचानक कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है। रात को सोए सुबह नहीं उठे। अब सोचो सपोज रात को हमारा किसी के साथ झगड़ा हो और हम उसको सुलझाएं नहीं और फिर हम रात को आगे चले जाएं, तो झगड़े का क्या होगा फिर हमारे झगड़े का क्या होगा, कहां जाएगा वो? अब वो संस्कार मेरे साथ चला जाएगा, वो कड़वाहट मेरे साथ चली जाएगी, वो कर्मों का हिसाब किताब मेरे साथ चला जाएगा। इसलिए हमेशा जीवन ऐसे जीना है कि कोई भी कर्मों का हिसाब किताब पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सब सेटल 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 करके रखें ताकि जब भी मैं आत्मा जाऊं तो बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट। याद रखेगा जिस तरह से हम इस शरीर को छोड़ते हैं, लाइट छोड़ते हैं, हल्का होकर छोड़ते हैं या बहुत बोझ लेकर अपने साथ छोड़ते हैं, उस आधार से हमारा अगला जन्म और अगला भाग्य बनता है। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूँ, माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती हूँ, कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है, पंडित जी उस बच्चे का जन्म पत्री बनाते हैं और पंडित जी कहते हैं हाँ अच्छा है, अच्छा भाग्य लेकर आया है, लेकिन फिर पंडित जी उस भाग्य के लेकिन बताते हैं सारे, लेकिन 10 साल में ऐसा होगा, लेकिन 25 साल में ऐसा होगा। ये जो लेकिन लेकिन सारे वो जन्मपत्री में आए, ये लेकिन कौन लेकर आया, ये लेकिन कौन लेकर आया, ये बोझ कौन लेकर आया? और इसीलिए पंडित जी कहते हैं ये साल से ये साल भारी है, ये साल भारी है, ये साल भारी है, बाकी साल ठीक है, ये साल भारी है। तो वो भारी क्यों आया? क्योंकि मैं आत्मा अपने साथ बोझ लेकर गई है। अगर मैं आत्मा लाइट होकर जीऊंगी, सारे बोझ चुकतू करूंगी, तो मैं जीते समय भी लाइट रहूंगी, मैं जाते समय भी लाइट रहूंगी और वहां जहां जाऊंगी वहां भी लाइट ही फैलाऊंगी। पंडित जी कहेंगे वाह जी क्या बच्चा आया है, ये तो सिर्फ अपना नहीं आप सबका भाग्य बदलने वाला बच्चा आपके घर आया है। ऐसे संस्कार आत्मा लेकर जाती है, ऐसे संस्कार लेकर जाने हैं। इसलिए कभी भी कोई भी बोझ कोई भी घाव यहां रखना नहीं है। ये जीते हुए हमको भारी बनाता है, ये जाने को मुश्किल कर देता है और ये हमारे साथ जाता है। एक बार जवाब दीजिएगा आप सब मिलकर, जब हम यहां से जाएंगे तो पीछे क्या क्या छोड़कर जाएंगे? सब कहते हैं ना सब तो पीछे रह गया, क्या अपने साथ लेकर गए, तो हम पीछे क्या क्या छोड़कर जाएंगे? सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? ये शरीर पीछे छूट जाएगा जिसको सारा दिन शीशे में देखते रहते हैं और कहते हैं मैं कैसी दिख रही हूं आज, मैं कैसी दिख रही हूं, वो मैं नहीं दिख रही होती, मेरा शरीर दिख रहा होता है। और जैसे ही मैं आत्मा और शरीर को छोड़ूंगी तो वो शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो शरीर पीछे रह जाएगा, रिश्ते लोग पीछे रह जाएंगे, सब कुछ जो मैंने कमाया था वो पीछे रह जाएगा, वो सारी बातें जो मैंने आज पकड़ के रखी हैं वो भी पीछे रह जाएंगी, लेकिन जो मैंने उसके बारे में अपनी सोच संस्कार और कर्म बनाए उसको मैं आत्मा चाहते हुए भी पीछे नहीं छोड़ के जा सकती, वो मेरे साथ ही जाएंगे। तो दो ही चीजें हैं जो मेरे साथ जाती हैं, मेरा कर्म, मेरा संस्कार। तो उसको हमेशा कैसे रखना चाहिए? कैसे रखना चाहिए? परफेक्ट, कोई भी एक भी दाग नहीं होना चाहिए। तो सफाई कब कब करनी चाहिए? जाते समय, सफाई जाते समय करेंगे। 5:30 बजने वाले हैं। अगर मुझे पता चले कि मुझे आत्मा ने आज रात को 10 बजे शरीर छोड़ना है, रेडी हो आप? क्या आपको लगता है हम रात को 10 बजे शरीर छोड़ नहीं सकते? हम अभी अभी इधर उधर इसी कुर्सी पे बैठे बैठे भी छोड़ सकते, किसको पता होता है। लेकिन अगर फिर भी मुझे 5 घंटे पहले पता भी चल जाए कि मैंने शरीर छोड़ना है, तो हम 5 घंटे में क्या करेंगे? अब ये आंसर आप देंगे, 5 घंटे पहले पता चला कि शरीर छोड़ना है तो 5 घंटे में क्या करेंगे? आप तो वैसे ही आबू बैठे हो, पहले तो घर पे फोन करोगे। घर पे फोन करना है कि नहीं? हमेशा ये चेक करना चाहिए। अगर मुझ आत्मा को पता चल जाए कि मैं आज शरीर छोड़ने वाली हूं, तो मैं आत्मा जाने से पहले क्या करूंगी? अब आप आंसर दो, क्या करेंगे बताओ। ये तो आपने बताना है, जाने से पहले क्या करेंगे? जाने से पहले एक बिजनेस डील और करेंगे साइन? नहीं। जाने से पहले नई साड़ी खरीदेंगे? नहीं। जाने से पहले पानी पूरी खाएंगे? नहीं। तो जाने से पहले क्या करेंगे फिर? जाने से पहले क्या करेंगे फिर? कौन कौन सोचता है कि जाने से पहले हम सबको क्षमा कर देंगे? हाँ, क्षमा कर भी देंगे, जाने से पहले हम क्षमा मांग भी लेंगे, मांगेंगे ना। जाने से पहले हम शुक्रिया भी करेंगे सबको, जाने से पहले हम सबके साथ बैठकर प्यार से बातें करेंगे। अब हमने कभी अपने आप से पूछा, जीते हुए तो क्षमा किया नहीं, जाते जाते क्यों क्षमा करना? फिर से तो मिलने नहीं वाले वो लोग हमें, अब क्यों क्षमा करना? क्षमा इसलिए करना है क्योंकि हर एक को पता है, हर आत्मा को पता है, ये बोझ मेरे साथ जाएगा। और इसीलिए हर आत्मा जाने से पहले अपने बोझ को चुकतू करना चाहती है। कुछ दिन पहले किसी के परिवार में तबीयत एक की ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने कहा था अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो आत्मा उसी शरीर में थी, वो शरीर नहीं छोड़ रही थी। महीना बीत गया, वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही थी, डॉक्टर ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते अभी। और फिर उनको किसी ने पूछा, क्या इनके साथ किसी की कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी, जो किसी को क्षमा नहीं किया या क्षमा नहीं मांगा, कोई बात ऐसी थी पेंडिंग? तो उन्होंने कहा हाँ, उनके भाई के साथ उनका थोड़ा सा। तो कहा बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, बुलाओ और उनको बोलो इनके साथ बैठकर बातें करें। मतलब वो आत्मा जो बीमार है वो बातें नहीं कर सकती है, वो तो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन बाकी तो कर सकते हैं ना। तो उस भाई को बुलाया, उनके भाई को बुलाया, उसने आया, बातें की, सब बोला कि चलो ना छोड़ो, खत्म हुआ, मेरी गलती थी, आप इस बात को छोड़ो, ऐसे ऐसे करके बात की। 1 घंटे के अंदर आत्मा खत्म। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत बार होता है, आत्मा रुकी रहती है, क्योंकि हम वापस उस रिश्ते में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम सब वापस मिलेंगे जरूर। और जिनके साथ भी आज हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी हम पहले मिले थे जरूर। जिनके साथ आज अच्छा है उनको भी हम पहले मिले थे, और उनके साथ आज हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके साथ आज हमारी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, टक्कर है, उनको भी हम पहले मिले थे जरूर। टक्कर हुई थी, जाने से पहले अपने हिसाब किताब को सेटल नहीं किया था, टक्कर को अपने साथ लेकर आए हैं, घाव को अपने साथ लेकर आए हैं, और इसीलिए आज उस रिश्ते में फिर से दर्द हो रहा है, फिर से दर्द हो रहा है। और अगर आज भी उस घाव को ठीक नहीं किया तो हम टक्कर को फिर साथ लेकर जाएंगे, और हर बार जब वो टक्कर हमारे साथ और जाएगी, वो घाव और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा दर्द करेंगे। इसलिए जो जाने से पहले 5 घंटे पहले करना है, उसको हर रोज करना चाहिए, ताकि जब भी जाने का समय आए तो कुछ करना नहीं होगा, प्यार से आत्मा शरीर छोड़ेगी, कोई उसको बोझ पीछे खींचेगा नहीं। तो जीवन ऐसा जीना चाहिए, परमात्मा सिखाते हैं, जीवन ऐसा जीना चाहिए जैसे कि हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है, मैं रेडी। अगर कोई आकर मुझसे अभी पूछे आपको जाना है तो आपको क्या करना है जाने से पहले, तो तुरंत हमारा उत्तर हो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ उसी दिन सेटल करती हूँ, मेरे पास पेंडिंग कोई हिसाब किताब नहीं है, आप बताओ कब जाना है, मैं अभी रेडी हूँ चलने के लिए। ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन जीना है। और ये इसलिए नहीं है कि हम आगे क्या लेके जाएंगे, ये इसलिए है कि अगर हम हर रोज हिसाब किताब को सेटल करेंगे, चुपचुप करेंगे, तो हमारा ये जीवन बहुत खूबसूरत बन जाएगा। बोझ लेकर जीना नहीं है, जब हम बोझ लेकर जीते हैं शरीर में गांठे आ जाते हैं, जो हमारे शरीर में दर्द आते हैं, गांठे आती हैं, क्लॉट आता है, ब्लॉकेज आती है, वो शरीर में तो बहुत बाद में आती है, पहले वो यहां बनती है। 3 हिस्से होते हैं एक बीमारी के, पहले ब्लॉकेज यहां बनती है, फिर हमारा एक एनर्जी का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर लाइट का, फिर ब्लॉकेज उसमें बनती है, और 3री स्टेज वो गांठ, वो ब्लॉकेज इस जड़ शरीर में बनती है। हम अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं, हम उस ब्लॉकेज को, उस क्लॉट को इस शरीर से निकालते हैं, और अगर हम कुछ नहीं बदलते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ध्यान रखना फिर से ना हो जाए। ये जो फिर से हो जाती है ना बीमारियां, ये वही होती हैं जो यहां से जड़ से उस बीमारी को नहीं खत्म किया था, जड़ से उस बीमारी को डॉक्टर नहीं खत्म कर सकता, डॉक्टर उस बीमारी को शरीर से खत्म कर सकता है। जड़ से कौन खत्म करेगा, उंगली रखो उन पे, जड़ से कौन खत्म करेगा? तो क्यों बातों को पकड़ के रखना, क्यों अपने शरीर को बीमारी देना, क्यों अपनी खुशी को गवाना? सदा लाइट लाइट, ऐसे ही जब हम हमेशा लाइट रहते हैं वो होता है उमंग उत्साह का जीवन, और जब उमंग उत्साह हमारे जीवन में होता है तो हर क्षण उत्सव उत्सव और उत्सव होता है। तो दिया कैसे जलाना है, कैसे रहेंगे हम, हाथ फिर से ऐसे करो, कैसे रहेंगे, इकट्ठे मिलकर बोलो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब सबको सामने लेकर आओ, देखो ऐसे, घर वालों को, परिवार को, बच्चों को, सबको लेकर आओ और उनको देखते हुए बोलो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। देने वाली आत्मा को क्या बोलते हैं, देने वाली आत्मा को दिव्य आत्मा बोलते हैं, देने वाली आत्मा को दाता बोलते हैं, देने वाली आत्मा को देवताई आत्मा बोलते हैं। तो मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ, देने वाली आत्मा हूँ। उत्सव पर हम एक और चीज करते हैं, हम स्वास्तिक बनाते हैं। अभी दिवाली आएगी, हम स्वास्तिक बनाएंगे, चलो अपने मन में स्वास्तिक बनाओ एक बार। कैसे आया था सिंबल, 4 भाग, 4 भाग है, चारों भाग एक बराबर हैं।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन फल सरकार।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है तारा।
अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज।
तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
सुख शांति और पावनता से भोले भर लो आज।
बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है तारा।
कर्म भाव से आए हैं शिव ब्रह्मा तन्वार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म तीर्थ अधिकार। कर्म भाव से
चलना है, चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है तारा। योगी जीवन है तारा, योगी जीवन है तारा।
तो स्वास्तिक बनाएंगे चार भाग, चार भाग बनाते हैं हम। और फिर हम चार भाग बनाकर क्या करते हैं, पहले भाग में बिंदी लगाते हैं, फिर दूसरे भाग में, फिर तीसरे भाग में, फिर चौथे भाग में। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व, मेरा अस्तित्व है वो स्वास्तिक। वो चार भाग हैं। पहले भाग में अब आप हाथ करेंगे, पहले भाग में हाथ ऐसे है, ये है ना पहला भाग, हाथ ऐसे पकड़ना, ऐसे फिर समझ आएगा ये स्वास्तिक क्या है। पहले भाग में हाथ ऐसे है, दूसरे भाग में हाथ इधर चला जाता है, मतलब ऐसे, ठीक है। तीसरे भाग में लाइन ऐसे बन जाती है, ऐसे। और चौथे भाग में लाइन ऐसे होती है। अब फिर से करेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये है सृष्टि के चार युग। पहला युग ऐसे सत्युग, क्या कर रहे हैं ये हम, क्या कर रहे हैं ऐसे, क्या होता है, क्या करते हैं हम, दुआएं देते हैं, ऐसे देने वाले दुआएं। दूसरा भाग त्रेता युग, देना बंद। तीसरा भाग द्वापर युग, क्या करना शुरू किया। चौथा भाग कलयुग, क्या करना शुरू किया। अब देखो, सत्युग दुआएं देना, त्रेता युग कम हुआ, द्वापर युग चाहिए चाहिए मांगना शुरू किया, और कलयुग तो मारना शुरू किया। सबसे ज्यादा किसको मारा कलयुग में, खुद को ही मारते हैं हर रोज अपने संकल्पों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस भाग के बाद कौन सा युग है, कलयुग के बाद अगला भाग कौन सा आ रहा है। रात्रि के बाद सुबह आनी है, घोर रात्रि के बाद तो बहुत जल्दी सुबह आने हैं। दुनिया इस युग को घोर कलयुग कहते हैं, परमात्मा कहते हैं एक तरफ कलयुग घोर कलयुग होता जाएगा, और दूसरी तरफ जो आत्माएं अपना दिया जलाएंगे, दिया जलाएंगे मतलब मैं आत्मा हूं वो दिया जलेगा, जो आत्माएं चाहिए 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 से देने वाली आत्मा बन जाएगी, जो आत्मा उस बड़े दिए से, दिवाली पे क्या करते हैं, बड़े दिए से छोटा दिया जलाते हैं, फिर छोटे दिए से अलग अलग एक एक दिया जलाते हैं, तो बड़ा दीवा मतलब परम आत्मा। जो आत्मा परम आत्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने अंदर वो सर्व शक्तियां भरेगी, क्योंकि अगर हमें ऐसे ऐसे नहीं रहना है और ऐसे वाला बनना है तो हमें खुद को भरना तो पड़ेगा ना सबको देने के लिए, राइट? अगर मुझे सबको देना है तो मुझे खुद को भरना है, तो खुद को कहां से भरेंगे? तो राजयोग अर्थात खुद को परमात्मा की शक्तियों से भरना और रिश्तों में सारा दिन सिर्फ देना। जब हम खुद को परमात्मा की शक्तियों से भरते नहीं हैं, इसलिए हम सारा दिन सबके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, राइट? तो जो आत्मा इस समय परम आत्मा से कनेक्ट होकर अपने को सर्व शक्तियों से भरेगी और ऐसा ऐसा करना बंद करके ऐसा करेगी, तो वो कौन सी आत्मा बन जाएगी? तो वो कौन सी आत्मा बन जाएगी? वो सत्युगी आत्मा बन जाएगी। कलयुगी आत्मा ऐसे करेगी, और घोर कलयुग में तो ऐसा भी नहीं करते, छीन ही लेते हैं, मांगते भी नहीं है। और सत्युगी आत्मा कैसे होगी? सत्युगी आत्मा कैसे होगी? देने वाली होगी। इसलिए देखो देवी देवताओं का हाथ हमेशा कैसे दिखाते हैं, देख रहा हूं, हाथ कैसे बनाते हैं देवी देवताओं का, ऐसे ऐसे दोनों हाथ हमेशा हाथों से दे रहे हैं, हाथ से दे रहे हैं मतलब आत्मा सबको दे रही है। और देवी देवताओं को किस पर खड़ा हुआ दिखाते हैं? तो कई बार देवी देवताओं को कमल पुष्प पर खड़ा दिखाते हैं। तो कमल पुष्प अर्थात दुनिया से छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, कीचड़ में रहते हैं लेकिन कीचड़ का असर हम पर नहीं पड़ता, तो जीवन कमल पुष्प की तरह बन जाता है। और कई बार देवियों को किस पर खड़ा दिखाते हैं? असुरों पर खड़ा दिखाते हैं, शेर की सवारी करते हुए दिखाते हैं। अर्थात मैं आत्मा जब उन शक्तियों को अपने अंदर भर लेती हूँ, देने वाली आत्मा बन जाती हूँ, तो असुर कहाँ चले जाते हैं? असुर कहाँ चले गए? असुर चले गए नीचे। असुर कौन से हैं? मेरे अंदर की कमजोरियां, मेरे अंदर के विकार। तो जैसे ही मैं आत्मा अपने आप को भरती गई, देने वाली आत्मा बनती गई, मेरे अंदर के विकार, मेरे अंदर की कमजोरियां, मेरे अंदर के असुर अपने आप खत्म होने लग जाते हैं, तब सही मायने में नवरात्रि है। तब सही मायने में नवरात्रि है। तो नवरात्रि मतलब क्या? दिव्यता का आह्वान करना, शक्ति का आह्वान करना। कौन सी शक्ति का आह्वान कर रहे हम? क्या शक्ति ऊपर से नीचे आएगी? नहीं, शक्ति अर्थात मुझ आत्मा की शक्ति और दिव्यता का मुझे आह्वान करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम व्रत करते हैं, हम जागरण करते हैं। कौन सा व्रत करना है? सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं करना है। आज मैं आत्मा सबको क्षमा करती हूँ, ये व्रत है। आज से मैं आत्मा हरेक से प्यार और सम्मान से बात करती हूँ, ये व्रत है। आज से मैं आत्मा हमेशा कम बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ, ये व्रत है। आज से मैं आत्मा कभी किसी से नाराज गुस्सा नहीं होती, ये व्रत है। तो व्रत मतलब वृत्ति को बदलना, एटीट्यूड को बदलना। तो नवरात्रि हमें क्या सिखाता है? व्रत लो और जागरण करो। जागरण मतलब जो अज्ञान की नींद में सोए थे कि उनकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उससे जागो। ज्ञान की अंधकार, अज्ञान के अंधकार को खत्म कर ज्ञान की रोशनी में जागो। और जब हम ये करेंगे तो दसवें दिन रावण मर जाता है। कहाँ है वो रावण? वो रावण कहाँ रहता है? रावण कहाँ रहता है? रावण भी यहाँ रहता है। दिव्यता कहाँ रहती है? वो भी यहाँ रहती है। शक्ति कहाँ रहती है? वो भी यहाँ रहती है। तो शक्ति का आह्वान कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। रावण को कहाँ मारना है? यहाँ मारना है। हम दोनों चीज बाहर जाके ग्राउंड में करके आते हैं, रावण को वहीं जाके मार के आ जाते हैं और अगले दिन उसको, अगले साल उसको और बड़ा बना देते हैं, क्योंकि हम बाहर उसको खत्म करके आए। रावण अर्थात दस सिर अर्थात दस विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, निंदा, ये मेरे दस विकारों के सिर हैं। और देवियां अर्थात अष्टभुजाधारी, इसका मतलब ये थोड़ी है कोई अष्ट भुजाओं के साथ आया था, इसका मतलब अष्ट शक्तियों के साथ वो आत्मा आई थी। शक्ति का प्रतीक भुजा में दिखाया जाता है, विकार का प्रतीक सर में दिखाया जाता है। कहते ना कितना अहंकार है, सर देखो कितना ऊंचा हो गया है। तो उस शक्ति का आह्वान करना है, उस रावण को जलाना है। और जब शक्ति और दिव्यता का आह्वान करके रावण को जलाएंगे, दीपक जल जाएगा, दिवाली आ जाएगी। और जब एक दीपक जलता है तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और घर घर में रोशनी आ जाती है। और वो है सृष्टि पर सत्युग आना, सृष्टि पर राम राज्य वापस आना। तो वो कौन लेकर आएगा सत्युग सृष्टि पर? सृष्टि पर सत्युग कौन लेकर आएगा? हाथ उठाओ, कौन रेडी है लाने के लिए? अच्छा, हम में से किस किसने कलयुग बनाने में सहयोग दिया था? उठा लो ना अच्छे से हाथ उठाओ। मैंने तो बहुत सारा दिया, हाथ उठाओ। हम सबने ये कलयुग बनाया, और किसने बनाया? कोई और आके थोड़ी दुनिया को कलयुग बनाएगा, हमने ही इसको कलयुग बनाया। और अब हम ही इसको क्या करेंगे? हम ही इसको सत्युग बनाएंगे। और उसके लिए क्या करना है? सत्युगी संस्कार अपने अंदर लाने हैं। और उसके लिए क्या करना है? हर रोज ज्ञान का घृत डालना है, नहीं तो दिया हिलने लगता है, ऐसे 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 लो हिलने लग जाती है। उसमें ज्ञान का घी रोज डालना है। क्या आप यहाँ से जाने के बाद ज्ञान का घी डालते रहेंगे? ये याद रखना, 3 दिन घी डालने से दिया हमेशा के लिए जलता नहीं है। वो तो रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में हिलने लग जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा जाएंगे, वहां पता चलेगा 2 घंटा ट्रेन लेट है, ओहो दिया हिलने लग जाएगा वहीं का वहीं। घी रोज डालना पड़ता है। तो यहां से जाने से पहले एक चीज पक्की जरूर करना कि यहां से जाने के बाद हम हर रोज थोड़ी देर के लिए सेंटर पर जाकर ज्ञान का घी डालेंगे, मतलब परमात्मा के महावाक्य जरूर स्टडी करेंगे, और साथ में परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर योग लगाकर राजयोग आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे। हर रोज आधा पौना घंटे का समय अपने लिए रखिए, हमारे संस्कार कलयुग से सत्युग बन जाएंगे और हमारा संसार कलयुग से सत्युग बन जाएगा। सबसे पहले तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, ये तो पक्की बात है। घर को स्वर्ग बनाने में तो 3-6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही एक दिया जलता है आपका, तो आपसे दूसरे का दिया जलेगा, तीसरे का दिया जलेगा और दिवाली आ जाएगी। तो इस साल हर उत्सव को अर्थ से मनाना है, अर्थ से मनाना है, क्योंकि आज दिन तक उसको बाहर ही मनाते आए हैं। वो उत्सव हमें अंदर उत्सव मनाने का और जीवन को उत्सव बनाने की सीख देने आया था। हम सिर्फ एक दिन के लिए उसको बाहर मनाते हैं, अगले दिन वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो इसलिए कौन कौन ये पक्का करेगा कि जाने के बाद हम इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे? ये 3 दिन का प्रोग्राम नहीं है। आप जाने के बाद सिर्फ 2 महीने के लिए, सिर्फ 2 महीने के लिए आप आधा पौने घंटे का सेंटर पर जाकर इस स्टडी को कंटिन्यू करें। 2 महीने में आपको अपने अंदर एक महान परिवर्तन दिखाई देगा और फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, वो आपकी दिनचर्या बन जाएगा। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर से। इस अभ्यास को हमने बार बार करना है, आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए करना है, हर घंटे में 1 मिनट के लिए करना है। ब्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सबको देने वाली आत्मा, मैं सत्युगी दिव्य आत्मा, अष्ट शक्तियों से भरपूर, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, हर शक्ति से मैं आत्मा भरपूर, मैं शक्ति हूं, मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूं, मेरा घर स्वर्ग है। देखें अपने घर को, हर दिया जल चुका है, शब्दों में मिठास है, शुभकामनाएं और दुआएं हर संकल्प में हैं। ये शुभकामनाएं और दुआएं कुछ खास दिन नहीं, मेरा हर संकल्प शुभ भावना दुआ है। मिठाई कुछ खास दिन पर नहीं, मेरा हर बोल शुभ है, मिठास और सम्मान से भरपूर है। दिया अखंड ज्योत जल रही है, मैं सत्योगी आत्मा हूं, सबको देने वाली आत्मा हूं। अब आप 5 मिनट इसी साइलेंस में बैठेंगे, बिल्कुल मौन में, अपने कर्मों को देखते हुए, अपने संस्कारों को देखते हुए कि मुझे आत्मा को अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है और कैसे मुझे यहां से वापस जाकर इस दिए को जगे रहने देना है। बिल्कुल मौन में बैठना 5 मिनट, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। संपूर्ण मौन, साइलेंस।